श्रीमद् भागवतम से ये पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 2 असुरराज हिरण्यकशिपु। आज इस अध्याय की 11 नंबर श्लोक। विष्णु द्विज क्रियामूल यज्ञ धर्ममय पुमान देवऋषि पितृ भूतानां धर्मस्य च परायणम्। विष्णु द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। शब्दार्थ, विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, द्विज ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का, क्रियामूल जिसका मूल है यज्ञ एवं वेदों में वर्णित अनुष्ठान को संपन्न करना, यज्ञ साक्षात यज्ञ भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष कहलाते हैं, धर्ममय धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण, पुमान परम पुरुष, देव ऋषि देवताओं तथा व्यासदेव एवं नारद जैसे महान ऋषियों का, पितृ पूर्वजों का, भूतानां तथा समस्त जीवों का, धर्मस्य धार्मिक सिद्धांतों का, च भी परायणम आश्रय। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार है और वे समस्त देवताओं महान पितरों तथा जनसामान्य के आश्रय है। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता यज्ञ द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। आज नया न्यू ईयर का रिजोल्यूशन पास हो रहा है। तो ये कौन बोल रहे हैं? आप लोग हिरण्यकशिपु से डायरेक्ट सुन रहे हो? किससे सुन रहे हैं? ये क्या चल रहा संवाद? किसका चल रहा? नारद युधिष्ठिर महाराज और नारद का संवाद है। नारद मुनि जो कह रहे किसको कह रहे? युधिष्ठिर महाराज कह रहे। वो दोनों जो युधिष्ठिर महाराज नारद बीच में जो बातचीत हो रहा था, फिर उसको इसको कौन कह रहा? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा, फिर उसी बात को फिर नैमिषारण्य की ऋषियों को कौन कहा? सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि। कितनी से पीढ़ी में आ रहा है पाणी है, परंपरा से एवं परंपरा प्राप्त है। तो इसलिए उसके बाद फिर हमें फिर प्रभुपाद जी के हैं मुख्य, फिर ये परंपरा से वैष्णव परंपरा से हम इसको श्रवण कर रहे हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि भागवत में जितनी भी जो जो कुछ लिखा है, लिखा गया है, वो कोई बद्ध जीव के द्वारा नहीं, चाहे हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु कोई बद्ध जीव है? हाँ? नहीं, वो जय विजय है, वैकुंठ के द्वारपाल है, हैं? तो इसलिए जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में कहते हैं कि टीका में कहते कि श्रीमद् भागवत में जितनी भी पर्सनालिटी के नाम उल्लेख की गई है, चाहे अजामिली हो, हिरण्यकशिपु, कहीं भी हो, वो सब बद्ध जीव नहीं है। ये ड्रामा में एक्टिंग करने वाला राक्षस है, हैं? वो एक्टिंग करके हमको सिखा रहे, वो ऐसे ही एक एक रोल लिए हैं, रोल लेकर जो एक्टिंग करके जो कुछ बोल रहे सब हमको सिखाने के लिए, ये नहीं मत सोचना कि वो सब राक्षस थे, नहीं, ये महान भक्त है। लेकिन भगवान ने चाहते थे कि हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत धाम लेके जाने के लिए ऐसे कुछ ड्रामा करके कुछ एक्टिंग करके दिखाना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो ये आने वाले नहीं। यदि मेरी भक्त बनोगे तो देखो प्रहलाद कैसा गति हुआ, गोद में बैठोगे, और यदि यदि ऐसे राक्षस प्रवृत्ति करोगे हिरण्य कशिपु तो फाड़ दूंगा पूरा सीधे, हैं? तो फिर आप डर से कैसे भी हो, हैं? भगवान के शरण में, भगवान चाहते कि हम उनके शरण में जाओ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे सोपार्षद सियो धाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जितने भाग लिए, कृष्ण की लीला में जितने भाग लिए, जितनी नाम चैतन्य चरिता में भागवत में देख रहे, ये सब बद्ध जीव नहीं है, से मुक्तात्मा है, लेकिन ये अभिनय करते हैं, हैं? राक्षसों या बद्ध जीव जैसे अभिनय करके हमें सिखाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, क्योंकि विष्णु ही ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु है, अतएव हिरण्यकशिपु की योजना विष्णु वध करने की थी, क्योंकि यदि विष्णु का वध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण संस्कृति भी विनष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे, और यज्ञ के अभाव में नियमित वर्षा होनी बंद हो जाएगी, यज्ञात भवति पर्जन्यः, इस तरह सारे विश्व में उत्पात होंगे जिससे देवता पराजित हो जाएंगे। इस श्लोक में हमें स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वैदिक आर्य सभ्यता के नष्ट होने से मानव समाज किस तरह विश्रृंखल हो जाता है, और ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होने वाला होने वाले वैदिक कर्मकांड बंद हो जाते हैं। कलौ सूत्र संभव, क्योंकि आधुनिक जगत की जनसंख्या अधिकांशतः शूद्र है, अतः ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, और इसे उचित मार्ग पर ले आना अत्यधिक कठिन है। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन की संस्तुति की है, जिससे खोई हुई ब्राह्मण संस्कृति सरलता से पुनर्जीवित हो सकेंगे। हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण ब्राह्मण संस्कृति तो विनष्ट हो चुकी है, नहीं ही क्षत्रिय सरकार है, उल्टे आजकल की सरकार प्रजातांत्रिक है, जिसमें कोई भी शूद्र मतदान द्वारा सरकारी बागडोर अपने हाथ में लेकर शासन हथिया सकता है। कलिजुग के विषाक्त प्रभाव के कारण शास्त्र भागवत की 12वें स्कंद के 2वें अध्याय की 13 नंबर श्लोक के ये कथन है, दस्यु प्रायेषु राजसु। सरकार दस्युओं अर्थात लूटरों की नीतियां अपनाएगी, इस प्रकार ब्राह्मणों से कोई आदेश नहीं मिलेंगे, और यदि मिले भी तो कोई क्षेत्रीय शासक नहीं होगा जो उनका पालन कर सके। सत्यजुग को छोड़कर पहले भी जब असुरों का प्रभाव था तो हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षेत्रीय सरकार को विनष्ट करने की योजना बनाई थी, जिससे सारे संसार में अराजकता फैल जाए। यद्यपि सत्यजुग में इस योजना को कार्यान्वित कर पाना दुष्कर था, लेकिन शूद्रों तथा असुरों से पूर्ण इस कलियुग में ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, और केवल महामंत्र के कीर्तन से ही पुनर्जीवित हो सकती है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात ब्राह्मण संस्कृति को सरलता से पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है, जिससे लोग इसी जीवन में सुखी तथा शांतिमय रह सकें और अगले जन्म में ऊपर उठने की तैयारी कर सकें। इस प्रसंग में माधवाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से यह श्लोक उद्धृत किया है। विप्रजज्ञादि मूलंतु हरिरीत्यासुरं मतं हरेरिवं हि सर्वस्य मूलं सम्यक् मतो निपः। हे राजन, असुरगण सोचते हैं कि हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन तथ्य तो यह है कि हरि ही ब्राह्मण तथा यज्ञ सहित प्रत्येक वस्तु के कारण है। अतएव हरि कीर्तन या संकीर्तन आंदोलन के प्रचार द्वारा ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षेत्रीय सरकार स्वतः वापस आ जाएगी और लोग अत्यंत सुखी होंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संधु में हिज होलीनेस राधा रमण स्वामी के स्वागत करते हैं। राधा रमण दास गोस्वामी महाराज की जय। विष्णु द्विज क्रिया मूल यज्ञो धर्ममय पुमान देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञ तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार है और वे समस्त देवताओं महान पितरों तथा जनसामान्य के आश्रय है। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता यज्ञ द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। हिरण्यकश्यप के ये प्लान है। किसको मारना है हिरण्यकश्यप किसको मारना चाहता, क्योंकि ये बैकग्राउंड पूरे पहले से आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि ये बातचीत थी। मुझे से कहा कि हम कहते कि ये मैं पूछा कि ये श्लोक कौन कहा, आप लोग कहा कि हिरण्यकशिपु ने हे हिरण्यकशिपु, बात तो चल रहा है लेकिन हिरण्यकशिपु किसको कह रहा, अपने राक्षस मित्रों को कह रहा है। लेकिन इसी वार्तालाप को हम फिर सुने किसके पास, जो हिरण्यकशिपु राक्षस मित्रों को कहा था उसको नारद मुनि ने फिर कहे कि उसको युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। और उसी बात को उस फिर कौन कह रहा था, सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज कह रहे थे, फिर इसको दोहरा रहे कौन, हिमिषारण्य की ऋषिया के सामने कौन दोहरा रहा, सुत गोस्वामी। अरे ऐसे ही परंपरा से आ रहा है, फिर प्रभुपाद जी की तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से वही बात को फिर हम सब सुन रहे हैं। तभी ये प्रसंग शुरू होता, जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के राजस्वीय यज्ञ में अग्र पूज्य किसको किया जाएगा, यज्ञ प्रारंभ होने के पहले कौन सबसे पहले पूजा प्राप्त करेगा, तो उसकी जब चर्चा होने लगा सब भीष्मदेव तथा अन्य सब वयोज्येष्ठ जितने भी सब लोग सपोर्ट किया, किसको किसको पूजा करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को पूजा होना चाहिए। तो सभी लोग खुश हुए, सभी लोग राजी थे पांडव लोग, लेकिन केवल दुर्योधन ने ये शिशुपाल और उसकी कुछ अनुजाई वो लोग इसमें सम्मत नहीं थे, क्योंकि तो तभी शिशुपाल ने खड़ा होकर इसका अपोज करने लगा है भूरी सभा में, बोला नहीं, क्योंकि वो उसको बड़ा गुस्सा था, किसलिए भगवान के ऊपर किसलिए गुस्सा था, बोले से ही तो वो है क्योंकि वो जन्म हुए इसके लिए, ईर्षा ईर्षा करने के लिए भगवान को है। कौन थे वो दोनों शिशुपाल दंतवक्र, इसकी पूर्व जन्म में ही वही थे हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, और बीच में फिर तृतीय में आए रावण कुंभकर्ण बन के, बल्कि बन के आए थे, फिर अभी आए द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हैं। तो इसलिए पहले तो वो तीन जन्म ऐसे आएंगे और भगवान की शत्रुता करेंगे, पहले से ही निर्धारित, भगवान को भी पता है ये लोग हो सकता भूल गए होंगे, लेकिन भगवान की बात पता है ये तीनों को, ये दोनों कौन है। ऐसे ही तो इसी द्वापर युग में मासी के लड़के थे, दमोहस के बेटे थे ये दोनों, मासी के लड़के, तो ये जन्म से ही भगवान कभी कभी बचपन में कभी किसी कारण छोटे यदि जाते थे मासी के घर में, ये पत्थर लेकर मारने के लिए भागते थे सीधा कृष्ण को, बचपन से ईर्ष्या इनके ब्लड से ही लगा कृष्ण के लिए। अब बाद में विशेष रूप में जब ये रुक्मणी को हरण कर लिए भगवान और शिशुपाल के पूरा क्या ईर्ष्या पूरा चरम सीमा में भगवान के प्रति आए, उसकी जो ईर्ष्या भाव तो बढ़ गया, तो इसलिए सहन नहीं कर पा, कैसे इनको अग्रपूज्य का है तो गाली दे, प्रकृति में भगवान की स्तुति कर रहा था लेकिन सोच रहे थे लोग गाली, भगवान ने पहले अपने मासी के वचन दिए थे, देखो तो तेरे बेटा का जितनी मेरी को निंदा करते रहेगा 100 बार मैं सहन करूंगा, 100 times 100 बार जो हो कि 101 पहुंचेगा तो मेरे सुदर्शन इसको खिमा नहीं करेगा है? तो इसलिए वो शिशुपाल निंदा करते रहे, ग्वाला है ये है, लेकिन ये सब भगवान के जसगान परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जसगान होता था, जब भगवान की वृंदा तो बोलने लगा बहुत कुछ गाना है, गाय चराने वाला है ये, तू कहाँ से राज सभा में कहाँ तुमको सिंहासन में बैठा रहे हैं, ये पर जो भी है कुछ, लेकिन भगवान 100 बार तो सहन किए, तो इसके बाद सुदर्शन जाकर उसकी गला काट ली, भगवान सुदर्शन को छोड़े हैं, क्योंकि यज्ञ के वहाँ पर ये यज्ञ क्षेत्र में नहीं तो लड़ाई करने के लिए सब तैयार हो गए, यहाँ से भीम बार बार गदा पीट रहा था वहाँ से है, दुर्योधन वंश खड़े, शिशुपाल अकेला नहीं है, हम भी है उसकी उसके साथ है, तो फिर इसीलिए भगवान ने सुदर्शन में सीधे इसका गर्दन काट दी बस है। लेकिन ये बात नहीं था कि गर्दन तो कट के चला मैंने काट दिया भगवान, लेकिन उस शरीर से वो देखे, सभी लोग देख रहे थे हाँ, एक ज्योति स्वरूप उसके जीवात्मा किसका, शिशुपाल का, वहां से निकला प्रकट हुआ और आकर भगवान की चरण में लीन हो गया, भगवान के शरीर मिल गया, ये देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज, देख रहे थे कैसा संभव है, नारद मुनि बैठे थे पास में पूछे हैं ये कैसा संभव है, इतनी बड़ा ईर्ष्या व्यक्ति है इसे कहते कि ईर्ष्या को कभी भगवान की सेवा में लगा नहीं जाए। ये तो ये इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा दुर्दांत दुष्ट व्यक्ति है, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु था, लेकिन ये गति इसको कैसे प्राप्त हुआ है? ये जो कि बड़ा बड़ा जो कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति जत प्रपदस्मि अभिचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं वजामि। कि उनके लिए संभव नहीं होता है, हजार हजार साल तक तपस्या करने वाले लोग ये गति को प्राप्त नहीं करते, इसको कैसे मिल गया? तभी फिर उसी प्रसंग में नारद मुनि पूरे इतिहास कह रहे, किसका? शिशुपाल के हैं, पूर्व जन्म के इतिहास शिशुपाल दंतवक्र के बारे में। इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप क्या है पहला जन्म तीसरी बार जो आए थे, ये कैसे जय विजय के दर्जे पर ये द्वारपाल थे, चार कुमार के अभिशाप के कारण किस प्रकार ये अभी कश्यप और दिति के हैं पुत्र के रूप में जन्म लेते, कैसे किस प्रकार दिति की गर्भ दैत्य माने ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों, छोटा था हिरण्याक्ष, ये बड़ा था कौन? हिरण्यकश्यप बड़ा भाई माना जाता था। और जब भी लेकिन ये अकेला हिरण्याक्ष इतनी प्रतापी था हाँ, जैसे वो स्वयं वामन देव कहते हैं उस प्रसंग में कहते कि देखो तुम्हारे अपने बड़ी महाराज को जो प्रशंसा कर रहे, कहे तुम्हारे वंशज में वो हिरण्याक्ष प्रकट हुआ था, अकेले एक हाथ में गदा लेकर तीनों लोक में घुमा है, कोई उसके सामने आया नहीं युद्ध करने, समकक्ष करने वाला कोई नहीं था। तो इस वो हिरण्यकश्यप इतनी प्रतापी था है? लेकिन फिर भी भगवान विष्णु है वराह अवतार में उसके विनाश इसको बध कर डाले। तभी तो हिरण्यकश्यप का आओ कौन संभाले है? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे भाई है, भाई को जो मार डाला है तू हमारा परिवार के शत्रु है, हाँ? वो हमारा शत्रु बन गया, पहले था विष्णु को उसको भगवान मानते थे लोग और वो सबका समान दृष्टि करता देखता था, असुर राक्षस को देवताओं सबको समान, उसको क्या लेना देना है हमारा झगड़ा में, ये तो हमारा घर का झगड़ा है, ये दोनों ही के राक्षस और देवता, ये कश्यप के लड़के कश्यप और कश्यप पिताजी एक ही है। लेकिन ये विष्णु अभी पक्षपात करने, देवता लोगों ने थोड़ा विष्णु का है चमचागिरी किया है, उसका कोई माला फाड़ा चढ़ा दिए होंगे पूरा पूजा बस, वो उनका पक्ष ले कि मेरे भाई को मार डाला, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, हाँ मेरे भाई रक्त का बड़ा शौकीन है, किसका? खून का। मैं मेरे भाई को तर्पण वो विष्णु का रक्त में करना चाहता हूं, विष्णु का गर्दन को काट लूंगा, ये तो अपने त्रिशूल को उठा के सबके राक्षस के सामने कहा कि गर्दन में काट लूंगा तो बहुत प्रचुर खून निकलेगा, आज खून में क्या करूंगा मेरे भाई को तर्पण, मेरे भाई बड़ा खून की बड़े शौकीन है। ऐसे राक्षस के सामने कह रहे कि देखो, लेकिन विष्णु तो ऐसे क्रोधित होकर आकाश भी देखता था, पूरा आकाश भी क्रोधित होकर धूमी पूरा आकाश धुआं धुआं हो जाता था, तो राक्षस लोग सब खड़ा चारों साइड घिर के थे जो अन्य नेता सब राक्षसों के हैं, और कहता था कि फिर लेकिन विष्णु तो कैसे, विष्णु को मारूंगा लेकिन विष्णु कहाँ है, हैं विष्णु सर्वत्र है लेकिन वो सब देख नहीं पाता है, कोई देख राक्षसों को नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे वो मृग क्या नाभि में क्या होता, अब मृग ढूंढता कहाँ है, कस्त्री कहाँ से सुगंध आ रहा, चारों साइड घूम घूम के पागल हो जाता है, हैं हिरण्यकश्यप भी ऐसा ही वो ढूंढ रहा है परमात्मा रूपी भगवान प्रत्येक हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, लेकिन ये ढूंढ रहा था है? अभी तो पागल होता नहीं, लेकिन देखा कि अरे विष्णु को तो मार लूंगा, वो बोला है लेकिन विष्णु कहाँ, दिखने से मारूंगा कि सामने आएगा तो है, तो माया भी है अबड़ा छलिया है, तो ऐसे उसको कहाँ ढूंढूंगा, लेकिन अन्य राक्षस लोग कहा कि देखो जब तक मैं विष्णु को बध कर नहीं माने ढूंढते रहूंगा और इसको बध नहीं कर डाला, मैं इसी कार्य मेरा है, तुम लोग नहीं कर पाओगे काम, विष्णु को मारने का काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं पाओ, अन्य कोई नहीं कर सकता, हिरण्यकश्यप का मैं ही केवल करूंगा ये काम, और जो दूसरे काम है सब तुम लोग को बता रहे तुम लोग क्या करना है। तुम लोग क्या करना, जैसे कोई प्लान करते ना बिल्ली का, मैंने बिल्ली की घंटी में न बिल्ली की गला में कौन घंटी बांधेगा है, तो अभी कह रहा मैं मारू, मैं वध करूंगा किसको, विष्णु को, और आप लोग सब मिलकर मैं जो प्लान कर देता हूं वो सुनो इसको है। तो विशेष रूप में आज के श्लोक में वो कहता कि भगवान विष्णु ही है नहीं, कहते ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञ तथा अनुष्ठान के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार है और वे समस्त देवताओं महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय है। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस तरह सारे देवता यज्ञ द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। तो किसको मानने के लिए बोल रहा है, राक्षस जो अन्य जो लीडर्स हो राक्षस के, इनको हिरण्यकश्यप कह रहा है कि आप लोग का काम है सारे ब्राह्मणों को मार डालो पहले, ये ब्राह्मण रहेंगे ना यज्ञ होगा। विष्णु दीज क्रियामूल यज्ञ धर्ममय पुमान, जितनी यज्ञ से होता है, यज्ञ किसको प्रसन्न करने किया जाता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये यज्ञ, लेकिन भगवान को विष्णु करने के लिए यज्ञ करता कौन, यज्ञ को करने वाले ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ही यज्ञों की दीज क्रियामूल, यज्ञ करने वाला के इनका जो जड़ में ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ही यज्ञ करते हैं। यदि ब्राह्मण समाज में नहीं रहेंगे यज्ञ कौन करेगा है, लेकिन यज्ञ करना शूद्र का काम नहीं है, वैश्य का काम नहीं, वैश्य धन दे सकता, क्षत्रिय का काम भी नहीं, वो मंत्र उच्चारण नहीं कर यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ करने वाला ही ये जो है ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण ही यज्ञ करने से देवता भी प्रसन्न, देवताओं की भी भोजन मिलता है और विष्णु भी प्रसन्न होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये ही ब्राह्मण लोग हैं, ये ही यज्ञ का क्रियामूल है। और इसी की यदि ब्राह्मण को इसलिए तुम लोग वध करो, देवर्षि पितृभूतानंग धर्मस्य च परायणम है, क्योंकि यदि ब्राह्मण को वध किया जाए तो क्षत्रियों का यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा, इस तरह सारे देवता यज्ञ द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं, आपको इनको डायरेक्ट मर्डर करने का जरूरत नहीं है, जो हथियार लेके ब्राह्मण मरना, लेकिन आप एक काम करो, क्या करो, ब्राह्मणों को ही मारो, समाज में जो ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी ने कहते थे कि मैं हम जो इस्कॉन सोसाइटी को जो बनाए हैं इसका एक लक्ष्य है कुछ ब्राह्मण को क्रिएट करना है, कहते कि ब्राह्मण को क्रिएट करने से ब्राह्मण फिर वो सब संभालेंगे, यज्ञ करेंगे सब, भगवान विष्णु प्रसन्न ऐसे तो, लेकिन हिरण्यकश्यप को ठीक उल्टा नीति है, वो अपने भगवान को हरा किसको मारने के लिए, ब्राह्मण को मार डालो, क्योंकि ये ब्राह्मण सब यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ करने से ही यज्ञ में जैसे आहुति करते ना स्वाहा देते हैं, इंद्राय स्वाहा वरुणाय, सब देवताओं को भी आहार मिल जाता है, इसलिए देवताओं के यज्ञ करने से उनका शक्ति भी बढ़ता है, किसका, देवता जो हमारा शत्रु है। लेकिन ये सारे देवताओं की भी जो मूल है जो वो कौन है, कि भगवान कहते कि भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वामंग शांतिरुच्यति है, पंचम अध्याय गीता की अंतिम श्लोक है, 29 नंबर श्लोक। तो भगवान कहते मैं ही सब यज्ञ तपस्या की एकमात्र भोक्ता हूं, यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम है, तीनों लोकों की मैं ही महेश्वर माने सृष्टि स्थिति प्रलय के अधिकारी हूं, सर्वलोक महेश्वर, और प्रत्येक जीवात्माओं की मैं ही एकमात्र स्रोत मित्र हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, इसको जो समझ लेता है फिर वो उसको कभी अशांति को प्राप्त नहीं करता, ज्ञान तो मांग शांति, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। तो हिरण्यकश्यप को तो समझ गया, बोला वो भी खुद कहा है यज्ञ तपस्या का भोक्ता, इसलिए यज्ञ होगा ना भोक्ता भोक्ता बनेगा है, इसलिए कहा कि सब ब्राह्मणों को जाकर गांव जाओ, सब ब्राह्मण बस्ती में सब घुसो, सब ब्राह्मण को समाप्त करो है। ब्रह्म हत्या का कोई डर नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये तो उस समय सत्ययुग में था, हिरण्यकशिप सोच रहा था कि ब्राह्मणों की वध करेगा, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करेगा, लेकिन अभी कलियुग से, कलियुग में ब्राह्मण संस्कृति ऑलरेडी नष्ट हो चुका है, हाँ? ब्राह्मण संस्कृति प्राय नष्ट हो चुका है। तात्पर्य प्रारंभ से ही प्रभुपाद लिखते कि विष्णु ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु है, अतएव हिरण्यकश्यप की योजना विष्णु वध करने की थी, क्योंकि यदि विष्णु का वध कर दिया जाए तो ब्राह्मण संस्कृति भी विष्णु नष्ट हो जाएगी, ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे। यज्ञ किसको पराम जानना चाहिए, यज्ञ किसको कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की जो विधि है इसको, जिस विधि के माध्यम से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, यज्ञ का अर्थ साधारण हम क्या सोचते हैं, कर्मकांड यज्ञ जो लकड़ी जाल के पर घी में आहुति देते हैं है? उसी को यज्ञ कहते हैं। लेकिन भगवान ने तो गीता में कई प्रकार के यज्ञों की लिस्ट दिए हैं, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, सब यज्ञ जिस प्रोसेस जिस किसी उपाय से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है, है? तो इसलिए सत्यजी के लिए, वो सत्यजी के लिए यज्ञ था उस समय, ब्राह्मण लोग ने यज्ञ करते थे, तृतीया में यज्ञ करते, तो सत्ययुग में प्रकृत में जो युग धर्म था क्या है, कृत्य च ध्यायत विष्णु, हिरण्यकश्यप स्वयं ध्यान करने गया था, इसलिए ध्यान करके ही शक्ति प्राप्त किया ना। तो लेकिन तृतीया युग में भी तो यज्ञ करते थे लोग, जजते मुखई, तृतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायांग कौ तत् हरिकीर्तनाथ, हाँ, नारद पंचरात्र विधि से अर्चा विग्रह की अर्चना करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, वो तो द्वापर युग में था, नहीं कलि युग में जो विधि है वो क्या है, हरि कीर्तन आता है, हाँ, कृष्ण वर्ण त्वेषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। इस कलि युग में ये 11 स्कंद के पंचम अध्याय कि कितना नंबर श्लोक, 32 ऐसे 32-33 श्लोक है, तो कहते हैं कि सुमेधसा जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य इस कलिए इसी युग में क्या करते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान विष्णु को पूजन करते हैं, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें भी सलाह देते कि इसी कलि युग में ऐसे कर्मकांड यज्ञ बा जो जिस प्रकार जिस रीति में हिरण्यकशिपु जो यज्ञ की चर्चा कर रहा है वैसा यज्ञ करना अभी संभव नहीं है, हाँ, कलि युग में ऐसा यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, कई शुद्ध गाय की दूध ना घी मिलता है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है घी स्वाहा कही के इंद्राय स्वाहा के जो घी देगा वो घी कौन सा होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, आप भैंस का घी डालोगे तो भैंस खाएंगे देवता, महिषासुर था ना महिषे भैंस है, अरे देवता लोग भैंस का घी खाते नहीं है तो आशीर्वाद कर देंगे नहीं, तुम जब भैंस का घी में स्वाहा करोगे आशीर्वाद न देकर अभिशाप देगी जाएंगे, क्या खिला रहा हमको है, भैंस खिला रहा, भैंस का तो घी खिला रहा है, तो घी तो कहीं मिलेगा नहीं, लकड़ी तो कहीं मिल जाता है लकड़ी, लेकिन घी नहीं मिलने वाला है, और क्या चाहिए, ब्राह्मण है, प्राचीन काल में जो यज्ञ होता था सत्य युग तृतीया युग में जो यज्ञ करते थे हिरण्य के यज्ञ, वो यज्ञ में मैचबॉक्स लगाते थे आग लगाने के लिए, है नहीं, ब्राह्मण इतनी पावरफुल होते थे कि ब्राह्मण अग्निदेव को आवाहन करते थे मंत्र में, मंत्र पाठ करके आवाहन करते तो अग्नि प्रकट होते थे, है अभी कोई है यज्ञ में कैसे अग्नि को बुलाने वाला, कोई ब्राह्मण नहीं है, फिर योग्य ब्राह्मण है ना तो घी ठीक से मिलेगा, तो कलि युग में ऐसा यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, है? ना अन्य प्रकार की जितनी प्रकार की यज्ञ और लिस्ट दी गई वो कोई भी यज्ञ ठीक से नहीं, स्वाध्याय करने को भी मंत्र भी ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं कोई ब्राह्मण, तो इसलिए इस कलि युग में श्री प्रभुपाद जी सलाह देते कि इसलिए हमें इस्कॉन सोसाइटी में ये यज्ञ की संस्तुति करते, कौन सा यज्ञ, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी लिखते हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 इति षोडशकं नामना कलौ कल्मष नाशनम्। ना तो परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में छीन भीन कर हमें देख लिए, और कोई उपाय नहीं है। ये 16 शब्द और 32 अक्षर वाले ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसी मंत्र को जपा कर, इसी मंत्र की जप और कीर्तन के माध्यम से ही कली हत मनुष्यों की ही कलमशा दूर होकर ये भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ है। प्रभुपाद जी कहते कि ये एकमात्र कलयुग के विषाक्त प्रभाव से के कारण शास्त्र जो जैसे 12 स्कंद की दूसरी अध्याय की 13 नंबर श्लोक में कहते हैं कि दस्यु प्रायेषु राजसु, ये कलयुग में जो सो राजा होंगे वो सो कैसे होंगे, दस्यु जैसे लुटेरे हैं, ये प्रजाओं के हित नहीं सोचेंगे। अभी तो डेमोक्रेसी चल रहा है, क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, द गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति था, वो कह दिया था, अब्राहम लिंकन था है? लेकिन ये बाय वो सब शूद्रों के द्वारा, जो प्रभुपाद जी का जो शूद्रों के द्वारा चुने हुए जो गवर्नमेंट है भाई, वो भी सब शूद्र होते हैं है? तो इसलिए ये शासन करने के इलेक्शन समय में ये तो सब बड़े प्रतिश्रुति देते हैं, हमें वोट दोगे तो आप हमें आपको क्या देंगे, राम राज्य है। लेकिन राम राज्य की कोई डेफिनेशन को पता भी नहीं है, राम राज्य किसको कहते, इनको राम राज्य पता है क्या, पॉलिटिशियन जो कहते राम राज्य किसको कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नवम स्कंद में राम राज्य की थोड़ा सूचना देते हैं राम राज्य के हैं। हाँ, भगवान रामचंद्र जी की शासन काल में नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भया क्लमः मृत्यु अनिच्छता मनास्ती राम और राजानी अधोक्य जी, जो अधोक्य जो भगवान रामचंद्र जी शासन करते थे उसे तीन प्रकार के क्लेश लोग प्राप्त नहीं करते, ना ना अधिभौतिक अधिदैविक अधि आध्यात्मिक क्लेश नहीं भोगते थे, व्याधि किसी प्रकार की व्याधि नहीं होता था, नाधि व्याधि जरा वृद्धावस्था है, ग्लानी लोग कोई ऐसे ही कष्ट दुश्चिंता दुश्चिंताग्रस्त नहीं होते थे हैं, जरा ग्लानी दुख शोक भय क्लम ये सब कुछ नहीं था, बड़ा यहाँ तक ये क्या कहा जाए, मृत्यु अनिच्छताम नास्ती है, इच्छा मृत्यु द्वापर में तो एक ही इच्छा मृत्यु था, किसका देखो मास्टर, जो रामचंद्र जी ने स्वयं विराजमान थे, बैठे थे सम्राट होकर राज सिंहासन में, जमराज की हिम्मत नहीं था और राम राज्य में प्रवेश करके इसको उठा के ले जाए हाँ? राजा जब इस प्रकार होता है, धार्मिक धर्म के सिद्धांत पर चलता है तो इसलिए आज, लेकिन आज के पॉलिटिशियन कहते कि हम तुमको रामराज देंगे रोटी कपड़ा और मकान ये दे देना, राम राज्य हो गया। राम राज्य में कोई मानसिक अशांति भी लोगों को प्राप्त नहीं होता था, कोई पिता पर कोई पिताजी के सामने उसका बेटा भी नहीं मरता था है? तो कहानी सब जानते हैं। तो इसलिए लेकिन आज की राज्य में तो सब जो राजा तथाकथित राज्य लुटेरे हैं, भागवत कहते हैं कि सो कलयुग के जो राजा होंगे सो लुटेरे होंगे, इसलिए प्रभुपाद जी और एक कोट करते जो मध्वाचार्य जैसे कि विप्र जाति मूल विप्र यज्ञादि मूलंग तु हरिर इति असुरंग मतम हरे रीव ही सर्वस्य मूलं सम्यक मत अनुप। हे राजन, असुरगण सोचते हैं कि हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मण तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन तथ्य तो यह है कि हरि ही ब्राह्मण तथा यज्ञ सहित प्रत्येक वस्तु का कारण है। सर्व कारण कारणम कौन है, गोविंदम कृष्ण। लेकिन राक्षस की उल्टा सोचता, ये सोचते कारण कौन है, यहाँ ब्राह्मण को समाप्त करेंगे, हिरण्यकश्यप कहते हैं ब्राह्मण को समाप्त कर देगा तो यज्ञ बंद हो जाएगा है, बांध यज्ञ बंद हो जाने से देवताओं को खाना नहीं मिलेगा, देवता लोग सब भूखे मर जाएंगे, ऐसे ही अपने आप मर जाएंगे, और विष्णु तो फिर विष्णु कोई पूजा करने वाला नहीं है, विष्णु भी समाप्त, यज्ञ बंद करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यज्ञ करने वाले तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण को सब मार डालो है, जिसमें यज्ञ करते हैं। लेकिन कली युग में यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्रायर। ये संकीर्तन यज्ञ ये कली युग के लिए रेकमेंडेड है, हैं? ये 16 शब्द 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन को स्थापित किया। अमेरिका में गए टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में, हैं? एक कुछ नहीं था, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठकर अकेले आए कीर्तन करिए। क्या कीर्तन किए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। अकेले ही प्रभुपाद जी, कोई नहीं था, कोई पास को है, अकेले ही ताली मार के केवल ताली बजाते हुए केवल कीर्तन की। उससे सब हिप्पी है, लड़का लड़की सब आ गए, बढ़ गए, बैठ गए, प्रभुपाद जी गिर गए। प्रभुपाद जी कृष्ण को धन्यवाद दिया, बहुत आपने अच्छा किया, इतने सारे लोगों को मेरे पास ले आया है। तो प्रभुपाद जी खड़े होकर फिर इनको प्रवचन देने लगे। सब पढ़े लिखे लड़का लड़की थे सब, हैं? हिप्पी मूवमेंट चलता था, वियतनाम युद्ध चलता था, इसलिए इस युद्ध में गवर्नमेंट सबको फोर्सफुली भेज रहा था, ये जाना नहीं चाहते थे, इसलिए घर बार छोड़ के घूम रहे थे, इधर उधर घर में नहीं जाते, सब पार्क में ही सो जाते थे, हैं? ऐसे तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि इस कलि युग में कोई सूची संपन्न नहीं है। धर्म के चार पैर, प्राय तीन पैर नष्ट हो चुका है। धर्म के चार पैर क्या है? सत्य शौच दया तप। इस कलि युग सब नष्ट हो चुका है। तपस्या तो सब, ये चारों तो पैर थे, कब थे? हिरण्यकशिपु के समय में चारों पैर थे, मौजूद था हर सत्य युग में, फिर भी हिरण्यकशिपु ब्राह्मण को मारने के लिए वो प्रयास करता था। अभी तो आस्ते आस्ते तृतीय युग में तो सत्य ने क्या नष्ट हो गया। सत्य युग का समाप्त तो होते ही एक पैर धर्म का नष्ट हुआ, जिस कारण से लोग तपस्या छोड़ दिए। किसका? नशा करना। लोग नशा करना शुरू कर देते, नशा करके तपस्या करता है। जैसे सो देखे बाबा लोग चिलम पीते हैं और सोच ध्यान करेंगे, चिलम पी के बाद शराब पी के कोई ध्यान करता है? नशा करने के धर्म ध्यान एक पैर धर्म का चला गया। फिर जीवों के प्रति दया नष्ट किया। क्या किया? जीवकों के यज्ञ के नाम लेकर, यज्ञ तो चलता था तृतीय में, लेकिन यज्ञ के नाम लेकर सब लोग क्या करने लगे, दया नष्ट हो गया, इसलिए वो भी चला गया। फिर तृतीय द्वार जो कि शुद्धता था, पवित्रता था, शौचता के कारण यज्ञ करते थे ब्राह्मण लोग, कहें अर्चन करते थे, भगवान की अर्चन होता था, तो आस्ते आस्ते पवित्रता भी नष्ट हो गया। अवैध संघ शुरू हो गया है, हैं? नारियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति अत्याचार करने लगे हैं, तो अवैध संघ शुरू हो गया, तो फिर पवित्रता नष्ट हो गया, हैं? और बाकी क्या बचा हुआ? सत्य। और सत्य केवल इसलिए इस कलि युग में ये बचा हुआ, सत्य को छुपाने के लिए कोशिश करो, छुपेगा नहीं, घूम फिर के सामने आ जाएगा, हैं? तो ये कलि युग के मनुष्य इसलिए और कुछ करने वाले नहीं। भागवत इसलिए कहते कि कृतेच ध्यायेत विष्णु तेतयं यजते मुखै द्वापरंग परिचर्यायं कलौ तत्, हैं? कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परंग रजेत। इसीलिए प्रभुपाद जी नाम को सलाह देते हैं, हरेर नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव हिरण्यकशिपु की चला मत बनो। प्रभुपाद जी कहते कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन इसको मत बनाओ। किसको? हिरण्यकशिप का पढ़े थे तो ये भागवत का बोले, तो भागवत श्लोक में तक बोला गया ये है नहीं, तो इसको नहीं। इसलिए न्यू ईयर्स का जो रिजोल्यूशन है, ऐसे तो हमारा न्यू ईयर्स कब है, हैं? गौराब्द है, गौरांग महाप्रभु के जन्म से। ये तो क्रिश्चियन लोग अपने क्रिश्चियन कैलेंडर को, हमारा ये सभ्यता इतने डिग्रेडेड हो चुका है, इतनी पतन हो चुके हैं, हम पाश्चात्य लोगों को अनुकरण करते रहे हैं, वो उनका कैलेंडर तक मान रहे हैं हम। देखो उनका जीसस क्राइस्ट के जन्म से वो कैलेंडर, हमारा कहते इंडिया में कितना कैलेंडर भी है, शकाब्द है और कई गौराब्द है। हम गौराब्द क्यों? गौरांग गौड़ीय वैष्णव है, तो गौरांग महाप्रभु के जन्म से ही मानना चाहिए गौराब्द है, गौर पूर्णिमा से है हमारा काउंटिंग करना। ये कोई जरूरी है ना कि वही ख्रिस्टाब्द ही काउंट करें, ज्योतिष गणना में ये सब कोई काम करता है तो। लेकिन फिर भी हम उसी को चल रहे हो धाराएं, भेड़ का न्याय, क्या बोलते हैं इसको, भेड़ का न्याय। क्योंकि भेड़ कहीं जाता चलता रास्ते में सीधा लाइन में जाता तो सामने जो भेड़ है वो भेड़ जो जहां जाएगा सारे पीछे जितने भेड़ सभी से जाएंगे। एक डंडा ले लो और सामने वाले भेड़ जा रहा लेकिन सामने ऐसे थोड़ा ऊंचा करके डंडा को ऐसे खड़ा सीधा तो जंपिंग करके जाएगा इसको। इसके बाद हाथी लाठी निकाल लो, निकाल देने से क्या होगा जितनी भेड़ आएंगे सब देखेंगे पहला वाला भेड़ इधर जंपिंग किया था तो सब जंपिंग करेंगे। तो ऐसा चल रहा है, है? अरे कोई अंग्रेज लोग थे वो शासन करते थे देश में तो वो लोग चला दिया था तो चलो यहाँ क्रिश्चियन कैलेंडर शुरू कर दिया था। इसका पहले हमारा कुछ कैलेंडर नहीं था ना, क्या हमारे देश में पंजिका था कि नहीं, कैलेंडर था कि नहीं, है सब चलता था। लेकिन वो आम को सोचते आम मुझे पागल हो जाते, मैं कल रात को देखा इधर इतना जोर से, मैंने ठीक है कीर्तन करना अच्छा है सो मैंने न्यू ईयर्स है, लेकिन हमारे कोई जन्माष्टमी बारात है कि गौर पूर्णिमा में भी है ऐसा कोई मस्ती नहीं होता है। न्यू ईयर्स कह के कितने निरीह जीवों को काटते हैं लोग, है मांस के मीट खाएंगे ये मछली का ये सब कितने निरीह जीवों को बध करके आनंद लेते हैं, शराब ये सब है। तो इसलिए ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी जब गए तो लंदन में लोग पूछे स्वामी जी क्यों आए इधर, हमारे पास तो सब है बाइबल है ये है, हम तो तुम्हें इधर क्यों आए। प्रभुपाद जी कहे कि आप मैं इधर आया नहीं कुछ लेने के लिए, तुमसे कुछ देने के लिए आया हूँ मैं, आप लोग इतने साल 300 बहुत साल हमारे देश में शासन किया और सब लूट लूट के लेके आया है, यहाँ तक कि कोहिनूर मणि को भी ले गए हैं। कोहिनूर मणि कहाँ था, हैं शाहजहान के वो मयूर सिंहासन में था है। अभी जो किसी फंक्शन होता है इंग्लैंड में है तो उनकी जो रानी है वो कोहिनूर का मणि धारण करती है, वहीं से लेके गए हैं। तो कोहिनूर तो प्रभुपाद जी कहे कि मैं आप तो सब लूट के लाया लेकिन जो छोड़ के आए थे ना उसको देने के लिए आया हूँ, है क्या छोड़ के गए थे हमारा संस्कृति है सनातन संस्कृति है? सनातन संस्कृति को लेकर हमारा जो प्रकृति में जो मूल्यवान चीज जो जो तुमको लाना उसको नहीं लाया, उसको छोड़ के आया इसलिए इसको देने आया हूँ। गीता को नहीं, गीता भागवत के से जो संदेश को आप लोग नहीं लाया इसी को देने आया हूँ, है कुछ लेने नहीं आया हूँ। लेकिन हम सब नकल करना चाहते उल्टे तो देखो सब वो उनका कैलेंडर उनका सब वो सब चल वो संस्कृति चलते रहता है, वो नंगे वो आधा नंगे रह के रहते हम भी ऐसा रहना चाहिए। यहाँ भी लोकेश के में वो कुत्ता रखते तो हम भी कुत्ता रखेंगे, ये कुत्ता कोई हमारे संस्कृति में था हैं हैं, ये इतने नहीं तो कोई घर के बाहर घर के अंदर नहीं रखता था बाहर पर, अभी वो भी शुरू हो गया सब संस्कृति वही हम इमिटेशन करते हैं। इसलिए न्यू ईयर्स का रिजोल्यूशन है कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए है। तो हमारा जो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन आमते सही तो न्यू ईयर्स एक पर आरंभ होगा हमारे कहाँ से कब से है गौर पूर्णिमा में, लेकिन जल्दी भी कोई ऐसा रिजोल्यूशन बना पा आप अभी फिर भी बनाना चाहते हैं तो ऐसा रिजोल्यूशन है हमें चार नियम पालन करेंगे स्ट्रिक्टली, ब्रेकिंग नहीं करेंगे है, हमें प्रत्येक दिन क्या करेंगे माला पर जपा, एक दिन भी फेलियर नहीं होगा माला बढ़ाएंगे जपा करने बोले इस रिजोल्यूशन हमें इसी प्रकार रिजोल्यूशन लेना चाहिए। हमें सनातन संस्कृति की प्रचार करेंगे, गीता की वितरण करेंगे, भागवत के संदेश लोगों के पास पहुंचाएंगे, ये सब रिजोल्यूशन हमें इसी प्रकार लेना चाहिए ना। हमें वो पाश्चात्य तो उनको अनुकरण करेंगे उनका मार्ग देख चलेंगे नहीं है, हमारा इतिहास है संस्कृति है ये सनातन संस्कृति यही सबसे प्राचीन संस्कृति है, है? तो हमें हमारी उन्नत संस्कृति को छोड़कर कभी आए अन्य जो अनुन्नत जो सब म्लेच्छ और जवानों की संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए है, वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी जैसे सलाह देते कि इस कलयुग में यही एकमात्र गति है हाँ, हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव गति गति रन था। और इसी को ही प्रभुपाद जी ने केवल बोले नहीं हमको नहीं केवल म्लेच्छ जवान को भी सुबह देकर इनको भी भक्त बनाया है। इसलिए आप ऐसे ही कुछ रिजोल्यूशन लीजिए, माला बढ़ाई जाए अधिक माला जपा करेंगे, हम भागवत डेली एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे भागवत हम प्रभुपा जी कहते थे कि ये इस्कन के भक्तों को मेरी एक क्रिटिसिज्म है, वो मेरे किताब को पढ़ते नहीं है, हैं? नाम कमाने के लिए वितरण तो करना चाहते, ठीक है चलो सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो इसलिए कुछ बांटेंगे किताब बांटेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं है। मुझे रात दिन जागरण करके जो पुस्तकों को लिखा है, ये केवल बांटने के बल पर है, इसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं जब ऐसा नया भक्तों को लेके जाता था, पाँच छः साल में नया भक्तों को देखभाल कर छः सात साल, तो उनको सब संकीर्तन लेके जाता था सब उत्साह के साथ बांटते थे, न्यू भक्त पार्टी पर फास्ट हो गए। एक दिन एक बार नया भक्त आया था, 15 दिन हुआ था मैं ले गया था, एक व्यक्ति आया एक गीता लेके तो आया, गीता तो उसे लिया, बड़ा उत्साह के साथ बहुत बांटता था लेके आया, पूछा कि तो उसको पूछा तुम्हारे लीडर कहीं बस में है पर तो आया, देखा गीता, बोला मैं आपका भक्त से लिया गीता, लेकिन मेरे एक डाउट रहा, ये गीता जो है इसके फ्रंट पेज में उसे नीचे लिखा हुआ एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैं उस भक्त को पूछा कि ये एसी का क्या अर्थ है, आज वो भक्त बोल बस उसके पता नहीं बताने सोच सोच के वो बोला कि फिर बात पलत बोल, लेकिन मैं बार बार इम्प्रेस भर बोला अच्छा एसी एसी का जो है हमारा जो गुरु महाराज है हमारा जो संस्थापक आचार्य जो प्रभुपाद है ना, ये जो रूम में रहते वो एसी है पीट है, जो गाड़ी में चढ़ते जो गाड़ी में जाते हैं वो भी एसी पीट है, जहां भी जाते हैं जहां भी घूमते उस समय इतना एसी नहीं था, लेकिन कहीं एसी हमारा है तो इसलिए सब जगह एसी में रहते तो एसी में घूमते एसी में रहते हैं सब जगह इसलिए एसी लगा। लेकिन वो व्यक्ति ने पूरा सैटिस्फाइड नहीं हुआ, बोला कि पता नहीं वो तो बोल दिया लेकिन मेरे को पूरा सैटिस्फेक्शन नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको पूछना आया है। जो जो लोगों को ऐसे व्याख्या करोगे तो फिर क्या होगा है बोल, तो इसलिए पढ़ना भी चाहिए। स्कंद सोसाइटी प्रभुपाद ने बनाया, बुक्स आर दी बेसिस, प्रीचिंग इज दी एसेंस, प्यूरिटी इज दी फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना उस कड़ा को सीखना चाहिए है। इसलिए किताब को नहीं पढ़ोगे तो कैसा प्रचार करोगे है? पढ़ने के लिए इसको पढ़ना भी चाहिए। इसलिए न्यू ईयर का रिजोल्यूशन इसी ढंग से कुछ होना चाहिए, हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए है? हम पढ़ते नहीं तो आज डिसाइड करें कम से कम हम कुछ पढ़ेंगे, एक श्लोक कम से कम शुरू करें तात्पर्य के साथ, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे हाँ? प्रत्येक दिन हम एक भागवत के श्लोक अनुवाद तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे हैं, समझेंगे, ऐसा कुछ निर्णय लेना जरूरी है। हम माला जपेंगे हैं, अधिक से माला जपेंगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ठीक से पालन करते हैं, ठीक से पालन करिए, ये सब ऐसे कुछ रिजोल्यूशन लेकर फिर ये साल को बिताना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना चाहिए हैं। हिरण्यकश्यप का अपना रिजोल्यूशन है सारे ब्राह्मणों को, लेकिन हम तो हमारा रिजोल्यूशन कुछ उसके अपोजिट होना चाहिए है? ठीक है, कोई किसके कमेंट है प्रश्न है? कई वर्षों में पूरी हुई, तो प्रभुपाद जी की जो कोई भागवत का एक श्लोक शब्दार्थ, जैसे प्रभुपाद जी ने इसका शब्दार्थ क्या है शब्दार्थ के साथ पढ़ के, तो फिर इसके अनुवाद क्या है, फिर उसके भावार्थ क्या है, ऐसा फिर आगे आगे प्रसंग को चलना चाहिए। हाँ एक ही श्लोक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तरह पढ़ोगे तो फिर अलग हो जाए, भागवत की पहला श्लोक ही 6 महीना लगेगा है, तो ठीक है आप जैसे चाहे जैसे, लेकिन पढ़ो कुछ ना कुछ है। हाँ हाँ विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर, अंतर इतना ही, वैसे वो घर में ही है ऑफिस में है, है? नारायण जो होते, प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं। ये मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये ऑफिस में बैठना आना पड़ता है, जैसे कि कोई हाईकोर्ट जज अपने घर में जाता है अपने पत्नी बच्चों के साथ, वहाँ उसका रिलेशन अलग होता है, एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन इसलिए विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं, उसमें भेद नहीं देखा जाता है, विष्णु तत्व में सब समान माना जाते हैं। तो इसलिए कई स्थान पर कोई लीला के कारण कुछ ही कारण से कृष्ण को भक्त लाइक करते हैं, कोई लाइक करता है, लेकिन नहीं तो विष्णु तत्व में सभी समान माने हैं, विष्णु तत्व में ज्यादा भेद नहीं देखा जाता है। तो इसलिए कृष्ण और विष्णु आमे के कोई तुलसी प्रणाम करता, कोई कहता कृष्ण भक्ति प्रदेय देवी, कोई बोलता विष्णु भक्ति प्रदेय देवी है, लेकिन वो क्या अलग बोल रहे हैं? नहीं है कि एक ही बात बोल रहे हैं, है? एक ही बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ यस, समय हो गया, ऐसे बोलो जोर जोर से बोलो। चलो ठीक है, उसको कर लेना, जो कर रहे हैं तो ज्यादा फनाटिक भी नहीं बनने का है, जो चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन हमारा जो कृष्ण बलराम मंदिर जो प्रतिष्ठित हो रहा था, जो डेटी इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, सब बड़े बड़े पंडित आए, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप लोग क्या करो, ये असली यज्ञ है, संकीर्तन के माध्यम से वो भगवान अवतरित होंगे, शुद्ध नाम संकीर्तन होगा तभी कृष्ण गोलोक से आए। गोलोक करे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ये गोलोक का प्रेम धन है, चैतन्य महाप्रभु उसको लेके आए, ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि असली डेटी इंस्टॉलेशन होगा ये कीर्तन के माध्यम से। चैतन्य जो नरोत्तम दास ठाकुर जो अपने खेतरी ग्राम में डेटिंग की इंस्टॉल कर रहे थे, वहां कीर्तन कर रहे थे, स्वयं लीडिंग कर रहे थे, तो हजार हजार भक्त नाचते थे, कहते उस कीर्तन के बीच में सभी लोग देखा कौन प्रकट हुआ, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पंचतत्व, और सारे गौर भक्त साक्षात जो 500 साल पहले जो ऑलरेडी अंतर्ध्यान हो चुके थे, सब फिर प्रकट हो गए हैं। इसलिए कलि युग के लिए प्रभुपाद जी कहते कि वही संकीर्तन यज्ञ असली यज्ञ है, इस यज्ञ के माध्यम से सब कुछ होता, लेकिन फिर भी लोगों को समझाने के लिए ये कभी कभी थोड़ा करना जरूरी है, क्योंकि सब आप पूरा सब लोग मानेंगे नहीं, आप ऐसा कहोगे तो फनाटिक नहीं बनने, सब लोग नहीं सब मानेंगे नहीं, तो इसलिए कुछ लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।